نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے ملنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسی چیز جو ہمارے یا دوسروں کے سننے میں مخل ہو، ہم اس کو ابھی سے ہی اپنے سے دور کر لیں، تاکہ تھوڑا سا وقت جو ہم اللہ کے نام پہ نکالیں تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، حنیف ہو کے. کوئی رکاوٹ ایسی نہ ہو کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے میں رکاوٹ پیدا کر دے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی آخری رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ایسی حقیقت کو ٹچ کریں گے صرف، کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں جانے اور بہت لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے، اگر اس وقت میں ہم کوئی ایک ایسی بات کر لیں اور سن لیں کہ جس سے ہماری باقی زندگی کو فائدہ ہو جائے، ہماری زندگی کے جو دن باقی ہیں اس دنیا میں ہم اس کا بہترین اور بھرپور استعمال کر لیں، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ مند ہوگا. میں مختصر سا اس کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور، کیونکہ بات پیچھے سے چل رہی تھی. قل، کہہ دیجئے. کس کو کہا؟ اللہ کے نبی کو کہا. قرآن پاک براہ راست اللہ کے نبی پر نازل ہو رہا تھا، اس لیے بہت سارے احکامات جو امت کو ملے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ملے. قل کہہ کے، جیسے آخری صورتیں بہت معروف ہیں، قل اعوذ برب الناس یا قل ہو اللہ احد، اور کسی بھی حکم کی اہمیت کے تحت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بس پورے قرآن پاک میں ہر حکم ہمیں سب کو ایسے ہی دیا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ جہاں بیچ میں اللہ کے نبی کو ڈالا گیا، کیونکہ جب کسی بڑے کے ذریعے سے بات کہلوائی جاتی ہے تو اس کی پھر عموماً قدر زیادہ کی جاتی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ حکم بھی کچھ ایسا ہی ہے. کیا کہا؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب. بہت پیارا انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. یہ نہیں کہا کہ ربی ابراہیم، ربی موسیٰ، یا ربی فلاں، یا ربی فلاں، کیونکہ جو میرا رب کہنے میں مزہ ہے وہ کسی اور کا رب کہنے میں تو نہیں ہے. سارے وسیلے، واسطے، ذرائع اور دوسرے تمام یعنی انسانوں کو الگ کر کے صرف اپنے رب کی بات ہوئی، اور قرآن پاک کا یہ انداز ہے. عموماً دعائیں ربی یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں. کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. یہ کون سے وسوسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ شیطان کے ذریعے سے لگے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے اوپر ایک شیطان और एक फरिश्ता मुकर्रर है। मतलब अभी हम यहाँ सब बैठे हुए हैं ना, तो हमारा ईमान है कि हमारे साथ भी एक फरिश्ता और एक शैतान है। फरिश्ता क्या करता है? नेकी का हुक्म देता है। मसलन अभी दर्स शुरू होने से पहले हमने नमाज़ पढ़ी, अजान की आवाज़ जो है ना, उसको सुनते ही हमारे अंदर से एक आवाज़ उठती है, चलो उठो नमाज़ पढ़ लो। ये उस फरिश्ते का इल्हाम था, उसने हमारे दिल में बात डाल दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमूमन इंसान ऐसे होते हैं कि जो ही अजान की आवाज़ सुनते हैं, अंदर से एक पुकार उठती है कि उठो नमाज़ पढ़ो, तो साथ ही एक और आवाज़ आती है, अभी नहीं, वजू नहीं है, अभी सर्दी बहुत है, अभी यहाँ कैसे, मेकअप ख़राब हो जाएगा, अब बाहर हूँ, अच्छा बाद में। ये जो दूसरी आवाज़ है ना, ये शैतान की आवाज़ है। ये हर एक के साथ होता है, और इसको बहुत वाजे करके सुनना है ना, फजर की नमाज के वक्त सुन लें, जब गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है। एक तरफ पुकार होती है उठो नमाज़ पढ़ो, और दूसरी तरफ होता है अभी नहीं, अच्छा पहले तुम वजू कर लो। और जिन घरों में एक रेस्टरूम होता है वहाँ तो और ही आजमाइश शुरू हो जाती है, कभी किसी को पहले मौका ना देंगे, लेकिन नमाज के वजू पे कहेंगे अच्छा तुम कर लो, सारे घर के कर लें, सारी फैयाजी उसी वक्त होती है। हाँ, तो ऐसे तमाम मौक़ों पे एक इंसान किस चीज़ की दुआ करे कि अल्लाह मेरे शैतान को तौफीक ना देना कि वो मुझे बुराई के वसवसे डाल, मुझे वसवसे दे। ये तो मैंने एक सिंपल मिसाल दी ना, लेकिन इससे ऊपर की आयतों को भी देखें और आम जिंदगी में देखें, हर लम्हे शैतान हमें बुराई पे उकसाता है। इंसानी मामलात हों, छोटी छोटी बातों में हमें इतना बदगुमान कर देगा, दूसरे की छोटी सी बात पहाड़ लगेगी, ऐसे लगता है कि बस इसने तो मेरी अनाह को मजरू कर दिया, इसको किसने ऐसे मुझे क्यों कहा, इसने मुझे ठीक से सलाम नहीं किया, इसने मेरी इज्जत नहीं की, इसने मुझे मेरा हक नहीं दिया। इस किस्म के जो उबाल उठते हैं ना जहन में, ऐसे तमाम मौक़ों पे याद रखने की दुआ क्या है कि रब्बी आऊज़ बिक मिन हमज़ाति शयातीन। आप में से भी किसी को अगर गुस्सा बहुत आता हो, या बहुत डिप्रेशन हो, परेशान रहते हैं, या बदगुमान रहते हैं, हो सकता है, यकीन करें ये हर एक के साथ हो सकता है, हम सब इंसान हैं और इंसान दुनिया की बहुत हसास चीज़ है। हर लम्हे हम इंसानों की जिस दुनिया में रहते हैं ना, उसमें टकराव होता ही रहता है, कुछ नहीं ना, अच्छे मौके पे भी मिलेंगे ना कोई बुरी बात हो ही जाएगी। लोग बड़े तपाक से शादियों पे जाते हैं, कई महीने की तैयारियां कर करा के, और उसके बाद वहीं छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, और लड़ने वाले कौन है? सगे भाई बहन, कोई पुरानी बात शुरू हो गई, कोई लेन देन की बात शुरू हो गई, कोई रिश्ते नातों की बात शुरू हो गई। तो कहीं भी अल्लाह ताला के मामले की बात हो, इबादत में सुस्ती हो रही हो, नेकी से दिल दूर हो रहा हो, या इंसानी ताल्लुकात में खराबी आ रही हो, तो इस दुआ को आप याद कर ले, कुरान पाक में लिखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है इसको याद करना। आयत नंबर 99 है सूरत अल मोमिनून का, और 18वां पारा है ये, ठीक है। तो पहली चीज़ आज की नशिस्त में हमने ये सीखी कि हम सबको हर लम्हे शैतान के शर से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि हम कितने ही अच्छे क्यों ना हों, लेकिन जो शैतान हमारे साथ लगा हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है। इसलिए जितना आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उतना ही इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। आजमा के देख ले, किसी को गुस्सा आया हो या आपको आया हो, चुपके से खामोशी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, आप देखेंगे कि गुस्सा भाग जाएगा। और साथ ही उससे बढ़कर फिर आगे और कुछ फरमाया, और वो क्या, वाउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और ए मेरे रब, मैं इससे भी तेरी पनाह में आती हूँ कि ये शैतान हाजिर हो जाए। शैतान हाजिर भी होता है, बिल्कुल हाजिर होता है। कभी आपने सुना होगा फलां के अंदर जिन आ गया, जिन चिमट गए, किसी के बारे में आपने सुना होगा वो बावलों वाली हरकतें करने लग गया। ये तो दूर की बात है ना, बड़े अल्लाह ना करे ऐसा हो, बहुत थोड़े लोगों के साथ होता है, लेकिन क्या आपने आम जिंदगी में कभी ऐसा देखा? बड़े प्यार से सारे घर वाले खाने की टेबल पे बैठे थे, अच्छी बातें हो रही थी, कोई प्लानिंग भी हो रही थी, अच्छा इस वीकेंड पे वहाँ जाएंगे, ये होगा होगा, इतने में हल्की सी बात पे शौहर को गुस्सा आ गया, चाहे वो खाने में नमक ही तेज था, या कोई एक ऐसी बात छेड़ दी कि जिसके बाद वो मर्द जो है उनका पारा चढ़ गया, टेम्परामेंट लूज हो गया, और उन्होंने पकड़ के जोर से खाने वाली प्लेट जमीन पे मारी, जो मैं नहीं खाता। अब बेगम को भी थोड़ा गुस्सा आया, वो कहती, अच्छा सारा दिन पकाती रही, आप तो खुश ही नहीं होते। उसने भी पकड़ा और पटक के चमचा मारा। थोड़ी देर में वो टेबल जहां बड़े प्यार और मोहब्बत से बातें हो रही थी, वो ऐसे लगा जैसे खाना जंगी हो गई। ऐसा कभी होता है? ये है शैतानों का हाजिर होना। शैतान का एक अल्टीमेट गोल याद रखिएगा कि ये हमें खुश नहीं देखना चाहता, इसकी दुश्मनी है हमारे साथ। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने आदम को इज्जत दी कि इसको सजदा किया जाए। मारूफ वाक्य, लेकिन हमारे मौजू से ताल्लुक रखता है तो दोहरा लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना था, सब फरिश्तों ने कर लिया, लेकिन इबलीस जो था वो अना का शिकार हो गया। वो कहने लगा, मैं क्यों करूं? उसके अंदर ईगो आ गई, हाँ मैं तो आग आग से बना हूँ और इंसान मिट्टी से बना है, और आग जो है वो मिट्टी से बेहतर है, लिहाजा उसने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में जो रखा हुआ था वहाँ से निकाल दिया, और चंद मरहलों से गुजारने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत में भेज दिया। अब क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है और शैतान बाहर है। कल तक वो अंदर था और इंसान नहीं था। बजाय इसके कि इसने अपनी गलती को तस्लीम किया होता, और अकलमंदी ये होती है कभी कोई नुकसान पहुंचे तो अपनी मिस्टेक देखे, वेयर आई वॉज रॉन्ग, मैं कहाँ गलत थी। शैतान हमें क्या कहता है? नहीं, दूसरे गलत है। यही काम आदम के साथ हुआ। उसने बजाय इसके कि इस बात को रियलाइज करने के कि मैंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उसने ये करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला तूने आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला, लिहाजा अब मैं इसका दुश्मन हूँ। कसमें खाई खड़े होके, अल्लाह ताला ने जब आदम को जन्नत दी तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे लंबी उम्र दे, मैं दोबारा जी उठने के दिन तक के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, जा ठीक है। कहा, मैं सबको बहकाऊंगा, आऊंगा इनके सामने, दुनिया को खूबसूरत करके दिखाऊंगा, ख्वाहिशात पैदा करूंगा, इनको दिखाऊंगा देखो ये दुनिया ही सब कुछ है, ये सब मेरे पीछे लग जाएंगे। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे चुने हुए बंदे जो है ना, वो नहीं मेरे पीछे लगेंगे, वो ये वो लोग होंगे कि जिनको अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का मौका मिल चुका होगा। सबसे कटके, सबसे बेनियाज होके वो अल्लाह की तरफ लग जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, शैतान बाहर था, उसको गुस्सा भी आ रहा था। सूरह आराफ अगर आप पढ़ें किसी मौके पे, तो उसमें पूरे अल्लाह ताला ने उसके वर्ड्स कोट किए हुए हैं कि मैं दाईं तरफ से आऊँगा, मैं बाईं से आऊँगा, मैं सामने से आऊँगा, मैं पीछे से आऊँगा। यानी इंसान को हर मुमकिन तरीके पे इस जन्नत में आने से रोकूंगा। क्यों? कि उसको पता है कि जिस जन्नत से मैं निकाला गया था, इंसान उसमें चला गया, तो मेरे लिए ये बड़ी रुसवाई की बात है। अब इस वक्त मेरी और आपकी, हम सब की समझदारी और अकलमंदी क्या है? अपने शैतान को पहचाने। दोस्त और दुश्मन की पहचान समझदारी की अलामत है ना। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जिसको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही ना हो? दिन में कई बार हो सकता है आप अपने बच्चों को समझाते हो कि देखो बेटा, हर एक को दोस्त ना समझो, हो सकता है फलां तुम्हारी दुश्मनी हो सकता है जो तुम्हें बहुत मुखलिस बन के आज मिल रहा है, कल तुम्हें धोखा दे दे। कहते हैं ना, दुनिया में कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी करे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सोचें आप, कोई आपका बहाने से सारा माल ले गया, आपका सोना चोरी करके ले गया, हद से ज्यादा ये ना कि आपकी जान ले ली, मार गया, कोई मार भी गया, सारा सामान भी ले गया। लेकिन यकीन कीजिएगा, ये नुकसान उस नुकसान से बहुत छोटा है जो शैतान हमारा करना चाहता है। उस जालिम को तो इतना अच्छा ट्रिक आता है कि हमारे ही नुकसान की चीज हमारे फायदे की चीज बना के दिखाता है। यकीन करें, वो हमारे ईमान का दुश्मन है। जान जाती है ना, चली गई, माल गया तो चला गया, ईमान चला गया ना, तो ये ऐसे ही है कि जैसे जन्नत चली गई।